दिन भर 2 जनवरी दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटाया।
नमस्कार, आई हैड द ऑनर ऑफ सर्विंग इंडियन क्रिकेट। सुप्रीम कोर्ट जजेस फील दैट बीसीसीआई कुड डू बेटर अंडर रिटायर्ड जजेस। आई विश देम ऑल द बेस्ट।
वर्षांत कार्यक्रमों की अंतिम कड़ी में आज मिलवाएंगे मशहूर पत्रकार और लेखक सईद नकवी से।
एक जवाहरलाल नेहरू थे जो कि दूसरे किस्म की कसमें खाया करते थे। वो इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे कि हम हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। सुप्रीम कोर्ट ने आज बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पद से हटा दिया है। लोढ़ा समिति की सिफारिश न मानने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को अवमानना का नोटिस भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल प्रबंधकों की एक कमेटी बीसीसीआई का काम देखेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस फैसले के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये उनके लिए निजी लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि बीसीसीआई एक रिटायर्ड जज के अधीन बेहतर काम कर सकता है तो मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी में जारी तकरार आज चुनाव आयोग तक पहुंच गई। मुलायम सिंह यादव आज पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर दावा जताने के लिए चुनाव आयोग पहुंचे। उनके साथ राज्यसभा सांसद अमर सिंह भी थे। रामगोपाल यादव ने कल लखनऊ में एक अधिवेशन बुलाया था जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया था। मुलायम सिंह ने इस अधिवेशन को असंवैधानिक बताया था। राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल के मुताबिक कल सुबह रामगोपाल यादव चुनाव आयोग जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। इराक की राजधानी बगदाद के एक व्यस्त चौराहे पर कार बम के जरिए हुए धमाके में कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई। धमाके के असर से 60 से ज्यादा अन्य लोग घायल हो गए हैं। धमाके की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। पूर्वी बगदाद में एक और धमाके की खबर मिली है। ये धमाके उस वक्त हुए जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद बगदाद के करीब फ्रांस के सैनिकों से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इराक में इस्लामिक स्टेट से लड़ाई से फ्रांस में चरमपंथी हमलों को रोकने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा,
Nous avons un ennemi commun. C'est le terrorisme.
चरमपंथ हमारा साझा दुश्मन है। ये दाएश और कट्टरवादी सोच है। हमें इस दुश्मन का वहां शिकार करना है जहां ये पलता है। ये है इराक और सीरिया। हमें यह भी समझना होगा कि इन चरमपंथी समूहों और खास लोगों के बीच जो संबंध हैं उनके जरिए कई देशों में हमले होते हैं। ये थे फ्रांसवा ओलांद के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान की जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता आराश सादेगी के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने तेहरान की एक जेल के बाहर प्रदर्शन किया। आराश को अलग अलग मामलों में 15 साल की सजा सुनाई गई है। वो 70 से ज्यादा दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और अपनी पत्नी को एक अन्य मामले में मिली सजा की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। उनकी पत्नी को एक प्रकाशित कहानी के लिए 6 साल की सजा सुनाई गई है। तुर्की पुलिस का कहना है कि नए साल के मौके पर इस्तांबुल के नाइट क्लब पर हुए हमले के मामले में उन्होंने 8 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। इस हमले में 39 लोगों की मौत हो गई थी। हमले के मुख्य संदिग्ध की तलाश जारी है। इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस्तांबुल की एक महिला ने बताया कि हमले की जानकारी होने के बाद लोगों ने नए साल का जश्न नहीं मनाया। उन्होंने कहा, हमें जानकारी हुई कि हमलावर अंदर गया है और वहां मौजूद लोगों पर गोलियां चलाता गया है। हम लोग यकीनन बेहद डर गए थे। सभी ने नए साल का जश्न मनाना बंद कर दिया और हम घर की तरफ रवाना हो गए। ये थे इस्तांबुल के निवासी बिलगर इरोगोलू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में हुए 2 कार बम धमाकों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। एक धमाका सुरक्षा चेक पॉइंट के करीब हुआ जबकि दूसरा पास के होटल में हुआ। चरमपंथी संगठन अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करके रेहान फदल का। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने को लेकर साल भर से ज्यादा समय से चल रहे मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पद से हटा दिया है। लोढ़ा समिति के इस फैसले के बाद अनुराग ठाकुर ने टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि बीसीसीआई सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नेतृत्व में बेहतर काम कर सकता है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। सुमिरन प्रीत कौर की रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने आज अनुराग ठाकुर को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। कोर्ट ने बोर्ड के सचिव अजय शिर्के को भी पद से हटा दिया है। रिपोर्टों के अनुसार अनुराग ठाकुर को लोढ़ा समिति की रिपोर्ट ना मानने के कारण से पद से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को अवमानना का नोटिस भी दे दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रबंधकों की एक कमेटी फिलहाल बीसीसीआई का कामकाज देखेगी। जस्टिस आर एम लोढ़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये जो भी हुआ ये हो रहा ही था और ये क्रिकेट के लिए एक बड़ी जीत है।
This is logical consequence because once
मैं बस ये कह सकता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है तो उसे मानना ही चाहिए सबको। बीसीसीआई ने नहीं माना है तो ये होना ही था, क्योंकि जिन बदलाव की, जिन सिफारिशों की बात हुई थी उन्हें लागू नहीं किया गया है। 8 जुलाई 2016 को जो फैसला आया था उसके बाद ये तय था कि बीसीसीआई को जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिश लागू करनी ही होगी। मुझे ये नहीं पता कि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे या नहीं, लेकिन जब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो उसे मानना होगा।
वहीं अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी।
नमस्कार, आई हैड द ऑनर ऑफ सर्विंग इंडियन क्रिकेट।
मुझे मेरे जीवन में ये मौका मिला कि मैं क्रिकेट की सेवा करूं। मेरे लिए ये निजी जंग नहीं थी, ये खेल संस्था की स्वायत्तता की लड़ाई थी। मैं उच्चतम न्यायालय का उतना ही सम्मान करता हूं जितना किसी नागरिक को करना चाहिए। अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को लगता है कि बीसीसीआई सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नेतृत्व में बेहतर कर सकता है तो मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यकीन है कि भारतीय क्रिकेट उनके मार्गदर्शन में अच्छा करेगा।
जल्द भारत और इंग्लैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचेस की सीरीज शुरू होगी। इस फैसले का मौजूदा क्रिकेट सीरीज पर क्या असर होगा, बता रहे हैं वरिष्ठ क्रिकेट पत्रकार अयाज मेमन।
बहुत बड़ा स्पोर्ट है इंडिया का और इसमें बहुत से चीजें इन्वॉल्व है, ना सिर्फ प्लेयर्स का इंटरेस्ट और एसोसिएशन का इंटरेस्ट, लेकिन स्पॉन्सर्स भी है वगैरह वगैरह। तो मुझे नहीं लगता है कि सीरीज में रुकावट आएगी। थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, कुछ हिकअप्स हो सकते हैं, लेकिन उसके आगे मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब 2013 में IPL में मैच फिक्सिंग और करप्शन, भ्रष्टाचार की जो स्टोरीज आई, तब उसी वक्त अगर BCCI ये पोजीशन ले लेता कि भाई ठीक है हम एक्सटर्नल इंक्वायरी करते हैं, हमारे जो अध्यक्ष इन्वॉल्व है वो बाजू हट जाएंगे जब तक क्लीन चिट ना मिल जाए, तो ये दिन देखने को नहीं मिलता।
भारत और इंग्लैंड के बीच मौजूदा सीरीज का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा 15 जनवरी को पुणे में।
अनुराग ठाकुर BCCI के अध्यक्ष पद से हटाए गए। समाजवादी पार्टी में चल रहा विवाद अब चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। पार्टी चुनाव चिन्ह पर दावेदारी को लेकर आज शाम मुलायम सिंह यादव दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। उधर अखिलेश गुट भी इस मामले में कमीशन से मुलाकात करने वाला है। उधर आज लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक परिवर्तन रैली को संबोधित किया। आइए सीधे चलते हैं लखनऊ समीर आत्मज मिश्र के पास। समीर, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक ड्रामा में ताज़ा खबर क्या है?
जी रेहान जी, जैसा आपने बताया, ताज़ा खबर तो यही है कि आज जो मुलाकात की मुलायम सिंह यादव ने, चुनाव आयोग गए वो लोग, शिवपाल यादव उनके साथ थे, अमर सिंह साथ थे, जया प्रदा साथ थी, और जाने से पहले ही मुलायम सिंह यादव ने ये बात स्पष्ट कर दी कि साइकिल उन्हीं की है और उन्हीं के पास रहेगी। यानी सीधे तौर पर वो ये संकेत दे रहे हैं कि उनके खिलाफ जो कुछ कल हुआ यहाँ जनेश्वर मिश्र पार्क में लखनऊ के, उससे वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और वो पूरी लड़ाई लड़ेंगे। उनका अधिकार है कि वो, उन्होंने उस पार्टी को खड़ा किया है और उनको बिना उनके चाहे, बिना उनकी मंशा के उनको पद से हटाया गया है। यही अखिलेश यादव का ग्रुप जो है, कल 11 बजे का, मंगलवार को 11 बजे का उनको समय दिया है चुनाव आयोग ने। अभी खबर यही है कि शायद रामगोपाल यादव अकेले ही जाएं, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनके साथ जाएं। तो दोनों ही ओर से अभी अगर कहा जाए तो तलवारें खींची ही हैं, म्यान के अंदर अभी नहीं पहुंची है।
तो ये तो रही यादव परिवार में हो रहे राजनीतिक ड्रामे की बात। नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में थे, उन्होंने परिवर्तन रैली को संबोधित किया, क्या बोले वहां पर?
परिवर्तन रैली में उनका सबसे जो बड़ा निशाना था वो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार में जो चल रहा है, जो संकट चल रहा है, चूंकि अभी कल परसों ही इतना बड़ा ड्रामा हुआ है और अगले ही दिन वो परिवर्तन रैली को संबोधित करने आए थे, तो स्वाभाविक था। और उन्होंने सीधे तौर पे किसी का नाम नहीं लिया, आज कहा कि एक पार्टी परिवार के लिए लड़ रही है, एक पार्टी बेटे के लिए लड़ रही है और एक पार्टी पैसों के लिए लड़ रही है। तो उनके जो ये प्रतीक थे ये लोग समझ ही गए कि वो किसके लिए कह रहे हैं। बाकी नरेंद्र मोदी ने लगभग चीजें वही दोहराई जो कि दूसरी अपनी रैलियों में, दूसरी सभाओं में करते हैं। नोटबंदी की भी उन्होंने चर्चा की और कहा कि वो चाहते हैं कि देश से काला धन खत्म हो और लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की हार हो।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका समीर आत्मज मिश्र लखनऊ से।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। और अब वर्षांत कार्यक्रमों की अंतिम कड़ी। पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व संपादक और मशहूर लेखक सईद नकवी की एक किताब आई थी, बीइंग द अदर, मुस्लिम इन इंडिया। इस किताब के एक हिस्से में उन्होंने अपना आत्मवृत्तांत लिखा है और दूसरे हिस्से में उन्होंने बताया है कि भारत की मुख्य धारा से मुसलमान अभी भी क्यों अलग थलग हैं। पिछले दिनों सईद नकवी बीबीसी स्टूडियो आए तो मैंने उनसे पहला सवाल यही पूछा कि आपने अपनी किताब का शीर्षक ये क्यों रखा?
धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो एलियनेशन हुआ है और ये प्रोसेस ऑफ अदरिंग, हम अलग हो जाएं, हम हमारी और आपकी सोच, जबकि एक ही गोरा गेवारे में हम लोग बड़े हुए, एक ही फुलवारी में खेले और उसके बाद हम दुनिया की बहुत सी चीज़ों को अलग अलग तरह से देखने लगे, ऐसा क्यों हुआ, उसको कहते हैं अदरिंग। मैंने अपने किताब में अपने अजीज तरीन दोस्त मरहूम विनोद मेहता के वाक़े का तस्करा किया है कि हम लोग एक ही शहर में, एक ही स्कूल में गए, एक दूसरे के वालदैन को जानते थे, उनके भाई वो हमारे भाई दोस्त थे, हम लोग एक ही तरह का खाना खाते थे, फ्राइडे की शाम को हम लोग हज़रतगंज जाते थे ताकि वो इज़ाबेला थोबन कॉलेज की जब हसीनाएं, उन दिनों में इसको बेहुदा बात नहीं कहा समझा जाता था, सेक्सिज्म नहीं कहते थे, हम लोग उनको देखने जाते थे, कभी मुलाकात हो जाती थी, कभी चिमेगोइयाँ होती थीं। तो एक जब वो एडिटर हो गए और मैं जर्नलिस्ट रहा, और उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया बम्बई में अपने दफ्तर में, कहने लगे सईद मैं चाहता हूँ कि तुम इस सब्जेक्ट पे एक सीरीज़ लिखो दो मजमूनों की, उसको अपन मुस्लिम पर्सपेक्टिव से लिखो। तो मैंने कहा विनोद तुम में और हम में भी ये फ़र्क आ गया, अरे भाई जो मैं जानता हूँ, जो पर्सपेक्टिव मेरा है वही तुम्हारा है, लेकिन अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं मुस्लिम पर्सपेक्टिव से लिखूँ, एट टू तुम भी ये है उसकी बुनियाद, गोया नवियत उस टाइटल का।
अच्छा ये बताएं, आपकी नज़र में हिंदू मुसलमान जो ताल्लुकात हैं इन जनरल, कुछ भी अच्छा नहीं है?
नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है ये कि, बल्कि एक एक्सप्रेशन है कि ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, मेरे ख्याल में ग्लास हाफ से ज्यादा फुल है, ऐसा नहीं है, परसेप्शन बुरा। मुसलमान ने यहाँ की चीजों को अडाप्ट किया, लोग ये नहीं जानते कि उर्दू का सबसे पहला प्रोज राइटर पंडित रतन नाथ सरशार, उनसे पहले फसाना आज़ाद जो कि सर्वांटीज के टेक ऑफ था उसके ऊपर, उसके अलावा कितने कृष्ण चंद्र, उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी, उसके बाद देखते चले जाइए, और शायर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, कोई था नहीं है, इसको लोग भूल जाते हैं और ये इस भूल की वजह से ये अदरिंग हुई है। और वो क्यों हुई उस पर मैं धीरे धीरे आपके पास आऊँगा। लोग ये नहीं याद रखते रेहान कि हम जहाँ के हैं, मुस्तफ़ाबाद मेरा गांव है, कस्बा है, अब वहाँ जब बच्चा पैदा होता था तो सोहर गाया जाता है, सोहर उस गाने को कहते हैं जो कि गाया जाता है जबकि वुमन इज इन कन्फाइनमेंट, जबकि बच्चा हो रहा होता सातवें महीने के बाद, खास करके हमारे यहाँ साहब असीमन आती थी, क्या गाना था हमारी अम्मा का, हमारी नानी इन सब का फेवरेट सोहर था, अल्लाह मियाँ हमरे भैया का दियो नंदलाल। हजरत बीबी रसूल की बेटी फातिमा बैठी हुई हैं और सुगरा जो कि क्लासिकल संस्कृत में मैसेंजर है, सुगरा से बात कर रही हैं, ए सुगरा अली जंग खत्म हो चुकी है, शाम हो गई है, अली साहब नहीं आए, जरा जाके ढूंढ तो, अगर वो कहीं न मिले तो वृंदावन में जाके देख लेना। लोग ये नहीं जानते कि ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या लिखूं मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, ये जनाब नज़ीर अकबर आबादी की ये एक नज़्म है, कई हैं ऐसी। लोग समझते हैं कि साहब ये कोई गोया हिंदू की चमचागिरी की जा रही, ऐसा नहीं था।
इस पे थोड़ी देर बाद हम लोग फिर वापस लौटेंगे। बात करते हैं आपके करियर की, आपने पत्रकारिता शुरू की स्टेट्समैन में और आप लखनऊ में पढ़ा करते थे,
जी जी जी।
किस तरह से इब्तिदा हुई कि?
एक ज़माने में ख्वाब हमारा था कि जेन ऑस्टिन ने 16 साल की उम्र में प्राइड एंड प्रेजुडिस लिख दी थी, तो मैं इतनी ही जल्दी उम्र में एक कोई नॉवल लिखूंगा, कोई किताबचा छपवा दूंगा, तो वो तो सब ना हो सका, लेकिन ये लिखने का शौक था। जब मैं यहाँ आया, अपने एक दोस्त सत्येंद्र नंदन का सूट मैंने बोरो किया, दोपहर को मेरे एक दोस्त के वालिद ने मेरा अपॉइंटमेंट करवा दिया, यहाँ अंग्रेज एडिटर था यही स्टेट्समैन की बिल्डिंग में, तो वहाँ साहब मैं गया। अब वो बाकायदा बड़े इनफॉर्मल दिन थे, वो मेज़ पे दोनों पांव क्रॉस किए हुए बैठा हुआ था और सिगार पी रहा था, तो उस सिगार का अरोमा और खैर थोड़े से पांव नीचे किए मुझे बिठाया और मुझसे पूछा कि तुमने कुछ लिखा है, मैंने कहा शायरी, तो वो मेरा मुंह तकने लगा कि ये कौन बच्चा आ गया मेरे सामने, तो कहा कि देखो वो उन दिनों में न्यू दिल्ली नोटबुक एक कॉलम होता था, वो न्यू दिल्ली नोटबुक का कॉलम उसने पन्ने पलट के मुझे दिखाया, उसने कहा देखो ये एक 400 वर्ड्स इस तरह के तुम लिख सकते हो, बड़ा प्रेस्टिजियस कॉलम था, वो एडिटर खुद एडिट करता था। तो मैंने कहा सब्जेक्ट, अब मैंने कहा मैं डरा कि साहब ये नेहरू की फॉरेन पॉलिसी पे आ जावे, पता नहीं क्या मुझसे पूछे। इसने कहा कैन यू राइट 400 वर्ड्स ऑन मैंगोज, आम के ऊपर। अरे मैंने कहा ये तो मेरे घर की चीज है, मेरे घर में खुद ही बागती, तो मैंने वो आमों के किस्से और आम की तरकीबें और आम के तरीके, उनका चूसने का और उनका काटने का और कलमी और तुखमी, ये सब मैंने लिख दिया। उसके बाद एक खत आया मेरे पास, इवन दो वी कैनॉट ऑफर यू एम्प्लॉयमेंट एट द मोमेंट, वी आर विलिंग टू टेक यू ऑन एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड we do not guarantee you employment, but the training you will have received here will stand you in good stead in finding work elsewhere. During this training period, we shall give you a pocket money of 300 rupees a month. मैं जनाब लेके चला गया, मेरे एक दोस्त थे हिंदुस्तान टाइम्स, मैंने कहा यार ये तो बर्बाद कर दिया, मुझे तो एयर इंडिया वाले 700 रुपए दे रहे थे। उसने कहा बेवकूफ मूर्ख, You are on to the best newspaper job in the world. उन दिनों में स्टेट्समैन की बड़ी बड़ी प्रेस्टीज थी।
आपने बहुत नाम कमाया शुरू में, एक आपने स्टोरी की थी बीटल्स के ऊपर, और उसमें रघु राय भी आपके साथ थे, वो बताएं वो किस्सा किस तरह से आपने वो स्कूप किया।
मुझे ऊपर वाला जो है वो मेरी इमदाद, मैं उसके ऊपर अक्सर व बेशतर शुभा करता रहता हूँ, और वो मुस्तकिल इस बात पे मुखिल है कि वो मुझे यकीन दिलाए कि वो है। मैं स्टेट्समैन के सामने है मॉडर्न स्कूल, एक साहब थे डॉन आइकट, वो कैनेडियन थे और किसी गुरु के चेले थे हिमालय में, वो यहाँ इंडियन एक्सप्रेस में काम करते थे, मेरे पास आए, कहने लगे सही डू यू नो दैट द बीटल्स आर कमिंग टू इंडिया, मैंने कहा अरे, कहने लगे दे आर कमिंग टू बी विद द महर्षि इन ऋषिकेश। स्टेट्समैन के सामने मॉडर्न स्कूल में उसी दिन महर्षि महेश योगी का एक कैंप लगा, मैं साहब सीढ़ी से नीचे उतरा, महर्षि के पास चला गया, कहने लगा कि नाम, मैंने कहा सईद नकवी, उनको बड़ी हैरत हुई कि ये मुसलमान नाम यहाँ महर्षि महेश योगी के आश्रम में क्या करने आ गया। बहरहाल ये उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बिठाया, मेरे कान में एक मंत्र दिया और वो मैं किसी को आज तक मैंने बताया नहीं। जितने साधु थे वो सब मुझे पहचान गए। अब जनाब बीटल्स आए, दुनिया का हर अखबार वाला, यानी आपके BBC से और जनाब स्पेशल प्लेन्स लेके और डेली मिरर वाले तमाम, और रघु राय नए नए थे स्टेट्समैन में, हम और रघु राय गए, मीडिया वाले सब बाहर। अब हम और रघु राय जब पहुंचे तो रघु भी बाहर, वो सब साधु जो गेट पे थे वो मुझे पहचानते थे। मैंने कहा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं अंदर, मैं जब अंदर गया तो मैंने साधुओं को बुलाया, मैंने कहा देखो ये पर्ची, ये बाहर एक लड़का खड़ा है उसका नाम है रघु राय, उसको ले आओ, मैं अकेले सब नहीं कर पाऊंगा यहाँ। और वो साधु समझे कि यहाँ कोई महर्षि का काम कर रहे हैं, वो जनाब दौड़ के रघु को ले आए। रघु घर क्या क्या क्या, मैंने कहा यहाँ पे कंधे पे कैमरे का जूम लेंस रख और वो देखो वो महर्षि, वो जॉन लेनन, वो पॉल मैकार्टनी और ये सब वो देखो दरख्तों के नीचे बैठे हुए, वो वहीं पे तुम तस्वीर ले। उसने तस्वीर ली, लेके गया और वो था अब दुनिया में सबसे रघु राय की वो पहला ग्लोबल स्कूप था। वही तस्वीर फिर डेली मिरर में गई। ये लोग सब तफरी में थे, जॉर्ज हैरिसन वाकई में सीरियस था, वो सितार सीखना चाहता था, रविशंकर ने एक यंग सितारिस को भेज दिया था। मैंने कई म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस करते हुए देखा है जो कि हिंदुस्तानी रागों पे बेस थे जॉर्ज हैरिसन को। एक बहुत मशहूर उनका गाना है नॉर्वेजियन वुड, डा 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 डा, ये है राग बागेश्वरी पे। अब ये सब ये बिल्कुल यानी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन मैं वहां मौजूद था।
फिर आप इंडियन एक्सप्रेस गए,
हमें बहुत से ब्रेक्स मिले स्टेट्समैन की वजह से। जब जयप्रकाश जी का मूवमेंट हमने कवर किया उसमें रामनाथ जी ने इन्वेस्ट कर रखा था उस मूवमेंट में, तो उसके बाद ये हुआ कि यार ये लड़का कौन है। यहाँ पे राधा कृष्णन हुआ करते थे गांधी पीस फाउंडेशन के, उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया तो हम चाय पी रहे थे, देखा तो रामनाथ जी आ गए। ये उन्होंने कंट्राइव किया था ये, तो रामनाथ जी आ गए। रामनाथ जी उनका भाई ये नकवी हैं, तो मैं कह लिया हाँ हाँ मैं आई नो यू एंड जॉइन अस। तो मैंने कहा कि अभी बात हो रही है, यानी वहीं खड़े यू विल लुक आफ्टर मुरारजी भाई। उन दिनों में जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, उन दिनों में एच के दुआ थे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट, बड़ी मुश्किल। श्री मुलगांवकर एडिटर इन चीफ, कुलदीप नैयर एडिटर एक्सप्रेस न्यूज सर्विस, अजीत भट्टाचार्य जी एडिटर, इतने लोग, इनमें से किसी को कानों कान पता नहीं। और आप रोज सवेरे मुझे बुलाएं, कौन रामनाथ जी, अपने सुबह आए बस अपना वी शैल डिस्कस। तो गोया उनका निज़ाम जो था वो उसके अंदर कोई हायरार्की की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो लंगोट बांध रहे थे, उधर खड़े हुए लंगोट बांध रहे हैं, पीछे कुलदीप नायर बैठे हुए कि कुलदीप ये सही नकवी जो है इसको अपन बाबूजी दे देते हैं, मुरारजी भाई बाबूजी अटल और पार्लियामेंट। इस तरह से डिसीजन हो गया था और हमारी उनकी ऐसी अच्छी बनी। शाम के वक्त बातें करें दुनिया भर की, कह हमने कहा रामनाथ जी अब 6-7 बज रहा है, अब इस वक्त शरीफ आदमी फर्ज करिए अगर विस्की पीता है तो आपके यहाँ तो वो मिलेगी नहीं। कहेंगे लुक हियर आई कीप बट ओनली फॉर इंग्लिश पीपल।
वो बताइए वो किस्सा बहुत दिलचस्प है जब वो खुद आपको मुरारजी देसाई से मिलवाने ले गए।
अरे साहब ये हुआ कि अपने मुरारजी भाई के पास चलें कल। अच्छा खुद एक छोटी सी बहुत पुरानी फीएट चलाते थे खुद। मैंने कहा रामनाथ जी ये क्या, कहने लगे कि देखो इससे रिफ्लेक्सेस तेज रहते हैं और दूसरी चीज ये है कि ड्राइवर फाइंड आउट टू मच। तो वो अपनी गाड़ी खुद चलाता था, साथ बैठा हुआ मैं, वो जाके ये रेड फोर्ट के सामने जो मंदिर है वहाँ गाड़ी पार्क करें, अंदर ही वुड गो इनसाइड फिडल विद द गॉड्स गिव अ लिटिल सम मनी कम आउट कल चलते हैं अपने मुरारजी के बारे में। चलिए उन दिनों में यार मैं बहुत उम्र में कम था और कम दिखता था। हमने कहा यार मुरारजी के पास ये ले जा रहे हैं तो एक मैंने चश्मा खरीदा ताकि जरा सा कम से कम थोड़ी सी छूट मूट की ग्रेविटास आवे समझे। तो वो चश्मा मैंने पहना और खैर अब वहाँ पहुँचे मुरारजी भाई के घर, तो टोंपे थे उनके सेक्रेटरी और टोंपों के पास से ऐसे जैसे कि इनका अपना घर है। यूं जब गए और दरवाजे पे खड़े हुए तो मुरारजी भाई सामने उनके दाहिनी तरफ जार्स में नट्स और दुनिया भर के आयुर्वेदिक लवाजमात वो रखे हुए, और ये जैसे ही पहुंचे, मैंने पावर को इतने करीब से कभी नहीं देखा था। आप बिल्कुल साष्टांग में लेट गए, हाथ उनके पांव के ऊपर, पूरा बदन जमीन पे। भाई कहा ये रामनाथ गोयनका क्या कर रहे हैं भाई, समझे था। और मैं खड़ा हुआ, फिर उठे, मुरारजी भाई नकबी गुड बॉय, ये अपने आपके दफ्तर में आप इसको लगा रहा हूँ, और बस मैंने कहा आपसे मिलवा दूँ, यू मे गो, बट डिसमिस कर दिया गया था। ये मैंने था पावर इक्वेशन उनकी देखी, बहुत मुझे प्यार करते थे, और घर की बहुत पॉलिटिक्स भी थी उनके दफ्तर में, और पॉलिटिक्स वो बढ़ाते भी थे। एक दिन मैंने उनको आइडिया दिया, कर लगे जीनियस, उछल के चल गए, लुक हियर नकबी बेटा, तू मुसलमान नहीं हो गए तो मैं तुझे आज एडिटर बना दूँ। अच्छा, ये कोई जिस तरह से, जिस प्यार से उन्होंने कहा मुझसे, वो अपनी एक मजबूरी मुझसे बयान कर रहे थे गोया, कि भाई बेटा मैं मजबूर हूँ, मैं कर नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद ये देखिए कि उसने मुझे एडिटर बना के साउथ में भेजा, और मैं 6-7 एडिशंस का एडिटर हुआ।
वापस आते हैं आपकी किताब पर, ये जो किताब है इसमें जो सबसे जैसे कहा जाए ब्लंट स्टेटमेंट है वो ये है कि पार्टीशन कांग्रेस का एक तरह से गिफ्ट था इंडियन राइट के लिए।
देखो इसके पीछे हम जरा सा बैकग्राउंड ये बता दें कि हम लोग नेहरू के रसिया थे, हिंदुस्तानी मुसलमानों का अनडिस्प्यूटेड लीडर अपनी ज़िंदगी में, जब तक 1964 तक जब तक जिंदा रहे, जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जी को हम लोग जवाहरलाल नहीं कह सकते थे, नेहरू नहीं कह सकते थे, पंडित जी। लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ें निकलना शुरू हुई, और उनको रिट्रोस्पेक्टिवली हम लोगों ने, सबने देखा, हमारे घर वालों ने देखा, तो एक डिसअपॉइंटमेंट पैदा हुआ, और वो डिसअपॉइंटमेंट धीरे 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 इस नतीजे पे पहुंचे कि यार ये पार्टीशन जो इन्होंने किया, और ख़ासकर मौलाना आज़ाद के 30 पेज इंडिया विंस फ्रीडम के उन्होंने किताब लिखी, और ये कहा कि 30 पेजेस जो हैं ये जब तक जवाहरलाल माय फ्रेंड एंड कॉमरेड वो जिंदा है और मैं ज़िंदा हूँ, उसके 30 साल के बाद ये छपे। वो सब 30 पन्ने अगर आप देखें तो उसमें बिल्कुल साफ है, और फिर बाकी तमाम एविडेंस आ गई कि इन लोगों ने बड़ी उजलत में पार्टीशन कर लिया। अब पार्टीशन के बाद क्या था, आपने पहले तो कहा कि साहब टू नेशन थ्योरी गलत है, बिल्कुल गलत है, तो टू फिर आपने एक थियोक्रेटिक स्टेट को मान कैसे लिया, तो एक तरफ तो आपने थियोक्रेटिक स्टेट मान ली, और दूसरी तरफ आप कह रहे हम एक सेकुलर इंडिया बनाएंगे, जो एक मुल्क जो कि बुनियादी तौर से मुसलमान है, बिल्कुल मुस्लिम मुल्क है, उससे आप नफरत करते हैं, और हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, उनसे उनके रिश्ते हैं, तो वो नफ़रतें इधर भी आएंगी। फिर एक कश्मीर का मसला आपने बीच में लटका दिया था, तो कश्मीर पाकिस्तान और हिंदुस्तानी मुसलमान ये मिक्स ऐसा था कि सेकुलरिज्म चली ही नहीं। अब बताइए इस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल का दुनिया में सबसे बड़ा स्टैचू जो है वो वल्लभ भाई पटेल, जो कि गांधी के चहीते, जवाहरलाल नेहरू के नंबर दो, हिंदुस्तान के पहले होम मिनिस्टर, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनका जो सबसे बड़ा स्टैचू गुजरात में बनाया जा रहा है वो कांग्रेस वाले नहीं बना रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी साहब बना रहे हैं। तो क्या मालूम हुआ कि ये और वो दरअसल बुनियादी तौर से एक थे, बस एक जवाहरलाल नेहरू थे जो कि दूसरे किस्म की कस्में खाया करते थे, लेकिन उन्होंने पार्टीशन में पूरा आगे उन्होंने तमाम स्कटल किया यूनाइटेड इंडिया के जितने भी फॉर्मूले पहले आए, असल में वो हर तरह की चीज़ चाहते थे, लेकिन वो इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे कि हम हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। यहाँ पे मेरे ख्याल में जो हमारी किताब में हमने आखिरी शेर लिखा है वो लुब्बे लुबाब है, असल में तुरफा तर ये है कि अपना भी ना जाना और यूं ही, यानी आयरनी ये है, तुरफा तर ये है कि अपना भी ना जाना और यूं ही अपना अपना कह के हमको सबसे बेगाना किया।
सईद नकवी बात कर रहे थे अपनी किताब के बारे में, और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने आज बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पद से हटा दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव आज पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर दावा जताने के लिए चुनाव आयोग पहुंचे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की दीपक जसरोटिया ने, रेहान फजल को, सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।